वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु में कुशल हैं। मित्रों, जैसा कि हम इन दिनों लुका रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने यीशु के मुख से एक कहानी सुनी जिसमें एक धनवान मनुष्य था और उसके द्वार पर एक कंगाल मनुष्य को लाया जाता था जिसके घाव कुत्ते चाटते थे। दोनों की मृत्यु हुई और अंत ऐसा हुआ कि मरने के बाद धनवान मनुष्य की आत्मा पीड़ा जगत में पहुंची, जबकि कंगाल लाजर की आत्मा को अब्राहम की गोद मिली। उनकी दशा के कारण ये नहीं थे कि वे गरीब और अमीर थे, परंतु उनके मन के कारण ये स्थान उन्हें प्राप्त हुए। मरणोपरांत उनकी स्थिति बदल गई, लाजर धनवान बन गया और धनवान मनुष्य कंगाल बन गया। तो आइए आज हम अपने अध्ययन को उससे आगे आरंभ करें और लुका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिंगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। दोनों की स्थिति विपरीत हो गई थी, लाजर सुख में था और धनवान मनुष्य कष्ट में। हम लुका 16 उसके 25 और 26 पद में पढ़ते हैं, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। आज की स्थिति यह है कि विश्वासियों की मृत्यु के बाद उनकी देह कब्र में मिट्टी हो जाती है, परंतु यीशु के पुनरुत्थान के कारण उनकी आत्माएं उसके पास चली जाती है। पौलुस कुरिन्थ की कलिसिया को लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में, इसलिए हम ढाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। मित्रों, परमेश्वर से रहित मनुष्य आज भी मरणोपरांत अर्थात मृत्यु के बाद अधोलोक में ही पीड़ा के स्थान में जाते हैं। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय उसके 8 से 10 पद में हमारे सामने एक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। दूसरे शब्दों में, जब हमारा प्रभु अधोलोक में उतरा अर्थात क्रूस की मृत्यु के बाद वह उस स्थान में गया जहां अब्राहम था, उसने वहां उपस्थित सब आत्माओं को अपने साथ लिया और परमेश्वर के पास गया। आज अधोलोक का वह स्थान खाली है। अधोलोक में जहां अविश्वासी जन है वह पीड़ा का स्थान है, जहां अविश्वासी मृत्यु के पश्चात जाते हैं। वह दिन आने वाला है जब अधोलोक में उपस्थित आत्माएं नरक की आग में डाली जाएंगी, उसके बाद वहां कोई नहीं जाएगा। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 14 पद में। मित्रों, हमारे देह एक भौतिक आवास है जिसमें हमारी आत्मा वास करती है। मृत्यु पर हम इस पुराने डेरे से निकल जाते हैं। आत्मा द्वारा इसे त्याग देने के बाद इसके साथ जिसे जो मन में आए वह करे। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि इस शरीर को त्यागने के पश्चात आत्मा का क्या होता है, वह कहाँ जाती है। मेरे मित्रों, स्वर्ग एक स्थान है। मरने के बाद आप वहां मसीह के पास जाएंगे या आप पीड़ा के स्थान में जाएंगे और अंत में आपका न्याय होगा जब आप अग्निकुंड में फेंक दिए जाएंगे। सत्य तो यह है कि परमेश्वर ने यह अग्निकुंड मनुष्यों के लिए नहीं बनाया है। अग्निकुंड शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। हम मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय के 41 पद में इसे पाते हैं। आपका गंतव्य आपके चुनाव पर निर्भर करता है कि आप कहां जाना चाहते हैं। प्रभु ने स्पष्ट कहा कि वहां बीच में विशाल खाई है, आपको इसी जीवन में अपना गंतव्य अर्थात वह स्थान चुनना है। मरने के बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। लूका 16 अध्याय के 27 पद में हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे। मित्रों, यहां पर ध्यान दे कि उस धनवान मनुष्य को अपने भाइयों की चिंता सता रही थी। वह चाहता था कि वे पश्चाताप करें और इससे पूर्व की देर हो जाए वे अपना विचार बदल लें। यदि अधोलोक से कोई लौट सकता तो निश्चय ही वह सुसमाचार प्रचार करता। हम लुकार्ची सुसमाचार 16 अध्याय उसके 28 से 31 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों को गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। मेरे मित्रों, अनेक जनों का यह मानना है कि यदि कोई मृतकों में से लौट आए और वहां का हाल सुनाए तो असंख्य जनों का मन परिवर्तन होगा। एक मनुष्य है जो मृतकों में से लौट कर आया है, उसका नाम यीशु मसीह है। उन्होंने उस पर भी भविष्यवक्ताओं और मूसा से अधिक विश्वास नहीं किया। मित्रों, विलंब न करें, मरने के बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। यहां पर अध्याय 16 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 17 से आरंभ करेंगे। अध्याय 17 में यीशु का व्यवहार बहुत कठोर है, परंतु किसके साथ? उनके साथ जो युवक युवतियों को पथ भ्रष्ट करते हैं। हम लुकार्ची सुसमाचार 17 अध्याय के 1 और 2 पद में पढ़ते हैं, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरे न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। मेरे मित्रों, यहां पर मेरे विचार में ड्रग्स बेचने वाले का दंड यही होना चाहिए। बालकों के लिए ठोकर का कारण होना गहन अपराध है, यह अधोलोक में पड़ने से अधिक बुरा है। आप वहां जाएं और आपका पुत्र या पुत्री कहे, पापा मैं यहां इसलिए हूं कि मैंने आपके चरण चिन्हों पर चलना नहीं चाहा। इससे अधिक कष्टदायक किसी के लिए और क्या हो सकता है? लुका 17 अध्याय उसके 3 से 6 पद में आगे पढ़ते हैं, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7ों बार तेरे पास फिर कर आकर कहे कि मैं पछताता हूं तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुन्द्र में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेता। मेरे मित्रों, दूसरे शब्दों में मसीह के अनुयायियों को क्षमा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, परंतु यीशु यह नहीं कहता है कि वे अपराध करें तो उन्हें मत झिड़कें। अपराधी को अपनी चूक अर्थात गलती का बोध होना आवश्यक है। यदि वह पछताए तो उसे क्षमा करना अनिवार्य है, चाहे वह बार बार अपराध क्यों न करे। यीशु अपने शिष्यों की सेवा की निष्ठा का आदेश देते हैं। यहां एक बार फिर यीशु कठोर प्रतीत होता है। अनेक जन यीशु को मृदु भाव कहते हैं, परंतु उसकी बातों से प्रतीत होता है कि वह बहुत कठोर भी था। वह बच्चों के साथ कोमल व्यवहार करता था, परंतु बच्चों के लिए ठोकर का कारण बनने वालों के साथ वह अत्यधिक कठोर भी था। हम लूका 17 अध्याय के 7 से 9 पद में पढ़ते हैं, पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसकी व्याख्या में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कुछ मनुष्यों का सोचना है कि वे पर्वतीय उपदेश का पालन करते हैं और अच्छे पड़ोसी हैं, मनुष्यों से प्रेम करते हैं, इस कारण परमेश्वर उनकी प्रशंसा करेगा और कहेगा, तू बहुत अच्छा मनुष्य है, तूने स्वर्ग में स्थान बना लिया है। यदि आप 10 आज्ञाओं को मानते हैं और पर्वतीय अर्थात पहाड़ी उपदेश का अनुकरण करते हैं जो संभव नहीं है, तो आप वही कर रहे हैं जो आपको करना है। क्या आप सोचते हैं कि इससे आपको उद्धार प्राप्त होगा? मेरे मित्रों, यह तो परमेश्वर की सृष्टि होने के कारण आपके लिए अनिवार्यता है। हमें यह समझना आवश्यक है कि उद्धार परमेश्वर का निर्मोल वरदान है। आप उसके लिए प्रयास नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना आपका और मेरा कर्तव्य है। लूका 17 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। यीशु 10 कोढ़ियों को चंगा करता है। एक सामरी कोढ़ी आभार व्यक्त करने के लिए वापस लौट करके आता है और बाकी नहीं आते हैं। लूका 17 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। स्मरण रखें कि प्रभु यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लूका 17 उसके 12 से 16 पद में हम पढ़ते हैं, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तई याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते हुए शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। मेरे मित्रों, इस पर फरीसी चौंक गए। और आगे हम देखते हैं लूका 17 उसके 17 पद से लेकर के 19 पद में, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे मित्रों, यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था। उनमें से एक कोढ़ी लौटकर आया और यीशु को धन्यवाद कहा। यह व्यक्ति एक सामरी था। यीशु ने उस पर एक और उपकार किया, उसके पाप क्षमा किए। अन्य 9 कोढ़ी रोग से तो मुक्त हुए, परंतु पाप से मुक्त नहीं हुए। कृतज्ञता मसीह मन का गुण है। आप रविवार को आराधनालय में क्यों जाते हैं? क्या आप वहां पर परमेश्वर की आराधना करने और उसके उपकारों का आभार व्यक्त करते हैं? आपकी आराधना का एक भाग है उसे धन्यवाद कहना। हम परमेश्वर को धन्यवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकते। उसे धन्यवाद देना कैसा उत्तम बात है। हम धन्यवाद के साथ अपने निवेदन भी परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं। हमारा मन उसके प्रति कृतज्ञता से भरा होना चाहिए। यीशु परमेश्वर के राज्य के आत्मिक परिप्रेक्ष्य को उभारते हैं। हम लूका 17 अध्याय उसके 20 और 21 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। मित्रों, यहां पर हम फिर से देखते हैं कि प्रभु यीशु ने एक सच्चाई को व्यक्त किया है। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। यीशु किससे बातें कर रहा था? वह फरीसियों को उत्तर दे रहा था, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। यीशु के कहने का अर्थ यह नहीं था कि परमेश्वर का राज्य उन अभक्त एवं विद्रोही फरीसियों के मन में था, परंतु यह कि परमेश्वर का राज्य उनके मध्य उपस्थित राजा प्रभु यीशु मसीह में था। वह वहां ठीक उनके मध्य में खड़ा था। यीशु अपने पुनः आगमन का उल्लेख करता है। हमारे युग का सबसे बड़ा भ्रम है कि मनुष्य अपने आप को और अपने संसार को उन्नत बना रहा है, कि वह परमेश्वर से रहित परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। वह मसीह के बिना 1000 वर्ष का राज्य ले आएगा। मेरे मित्रों, यीशु की शिक्षाओं में अधिकांश का विषय था राज्य का महिमामय दिन। सत्य तो यह है कि यीशु ने भविष्य पर अर्थात आने वाले परिवर्तनों और उसके फिर से आने पर बल दिया है। एक मुक्त विचार रखने वाला थियोलॉजिकल अर्थात एक बाइबल अध्ययन करने वाला विद्वान जो यह शिक्षा देता था कि प्रभु यीशु सदाचार का अच्छा शिक्षक था, एक ही बात दोहराते दोहराते थक गया और प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर अध्ययन करने लगा। अपने अध्ययन में उसने यह निष्कर्ष निकाला कि यीशु अंतिम समय का शिक्षक था। उसकी शिक्षाओं का विषय भविष्य का था। उसका पृथ्वी पर पुनः आगमन उसकी शिक्षा का विषय था। उसने अपनी इस खोज पर एक पुस्तक भी लिखी। इस महत्वपूर्ण गद्यांश में यीशु अपने शिष्यों को चिताता है कि वे उसके पुनः आगमन के बारे में धोखा न खाएं। मित्रों, अब मसीह का फिर से आना दो चरणों में होगा। पहला चरण होगा कलीसिया का बादलों में उठाया जाना, सच्चे विश्वासियों का उठा लिया जाना, जो पहला थिसलोनियों की पत्री 4:13-18 पद में व्यक्त है। परंतु यहां प्रभु यीशु अपने पुनः आगमन के दूसरे चरण की चर्चा कर रहा है, जब वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। यह विश्वासियों के उठाए जाने और महाक्लेश के बाद की घटना है। हम लूका 17:22-23 पद में पढ़ते हैं, और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है या देखो यहां है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। पहली बार जब यीशु आया तब वे उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि वे एक युद्ध विजेता मसीहा की बाट जोह रहे थे जो उन्हें रोमी साम्राज्य से स्वतंत्रता दिलाएगा। वह तो एक बालक रूप में जन्मा था और ग्रामीण मनुष्य था। जब वह फिर से आएगा तब वह बेतलेहम जैसे छोटे स्थान में नहीं वरन महिमा में आएगा। अतः वह अपने शिष्यों को सावधान करता है कि वे किसी के बहकाने में ना आए जो कहेंगे कि मसीह यहाँ है या मसीह वहां है या उसके आने के समय की घोषणा करेंगे। यह एक कारण है कि आप मसीह के आगमन का समय निश्चित नहीं कर सकते हैं। लुकार्ची सुसमाचार के 17:24 पद में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौंधकर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। मित्रों, जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करने आएगा तब बिजली चमकने की सी चकाचौंध होगी। मत्ती 24 से तुलना कीजिए जहां पर हम इसके विषय में पाते हैं। लुका 17:25 पद में हम आगे पढ़ते हैं, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। क्रूस परमेश्वर की कार्यसूची में था। प्रभु यीशु ने क्रूस सहा क्योंकि वह आपको और मुझे बचाना चाहता था। उसने अपने कार्य को स्पष्ट कर दिया अर्थात उसका वर्णन भी किया था। वह कष्ट उठाएगा और अपने द्वारा त्यागा जाएगा अर्थात उसके अपने ही लोग उसे ठुकराएंगे। तब हम आगे लूका 17:26 पद में पढ़ते हैं, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के युग में क्या स्थिति थी, वह क्या प्रकट करना चाहता था। लूका 17:27 में पढ़ते हैं, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। परंतु इन बातों में बुराई क्या थी, विवाह करना अपराध नहीं है, खाने और पीने में क्या बुराई थी। हमें जीवित रहने के लिए खाना पीना आवश्यक है। यीशु ने ऐसा क्यों कहा, नूह के युग में मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे थे जबकि विनाश सिर पर मंडरा रहा था। आज की स्थिति भी ऐसी ही है, मनुष्य खाने पीने में व्यस्त हैं और विवाह के बिना ही साथ रहते हैं जबकि परमेश्वर के भावी दंड से वह अनभिज्ञ हैं और कब हम नहीं जानते। लुका 17:28-29 पद में हम पढ़ते हैं, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। यहां प्रभु का यह कहना आश्चर्यजनक है क्योंकि लूत नूह से सर्वदा भिन्न स्वभाव का व्यक्ति था। परिस्थितियां दोनों ही एक समान थी। सदोम में किसी को भय नहीं था, वे भूमि बेच रहे थे। उन्होंने लूत की चेतावनी की चिंता नहीं की, विश्वास नहीं किया। लूत के निकल जाने तक परमेश्वर ने सदोम का नाश नहीं किया, न ही परमेश्वर अपनी कलीसिया के उठाए जाने तक महाक्लेश आने देगा जो मसीह के राज्य के पूर्व होगा। मित्रों, यह बड़ी विचित्र बात है कि यीशु लूत का उदाहरण देता है। उसने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में जैतून के पर्वत पर अपने शिष्यों से चर्चा करते समय लूत का संदर्भ नहीं दिया था। इसका कारण है कि मत्ती रचित सुसमाचार में वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए अपने आगमन का उल्लेख कर रहा था, परंतु लूका में विषय व्यापक है। सदोम नगर अपने पापों के कारण विनाश के कगार पर खड़ा था और लूत के निकलते ही नाश हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वासियों के इस संसार से कूच करते ही महाक्लेश आरंभ हो जाएगा। लूका 17:30 पद में हम पढ़ते हैं, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आज इस संसार में परमेश्वर के लोग हैं जो अनेक प्रकार से लूत के सदृश हैं। यद्यपि उन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वे संसार के साथ समझौता में जी रहे हैं। तथापि विश्वासी होने के कारण वे दंड के उंडेले जाने से पूर्व इस संसार से उठा लिए जाएंगे। आज संसार कलीसिया की चेतावनी पर ध्यान नहीं देता है जैसा लूत के युग में था। आज संसार सोचता है कि हम व्यर्थ ही बातें करते हैं। लूका 17 अध्याय के 31 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। मत्ती रचित सुसमाचार में चर्चा करते समय प्रभु यीशु इस समय को महाक्लेश कहता है। आगे लूका 17:32 में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी परमेश्वर के आदेशों की अवहेलना करने वालों में से एक है और उसका उदाहरण यहां पर है। सदोम में उसकी पुत्रियां और मित्र थे और यह संभव है कि उस दिन उनकी किट्टी पार्टी थी। उसका मन बार बार कह रहा था, लौट जा लौट जा, और उसने पलट कर क्यों देखा? उसे विश्वास नहीं था कि परमेश्वर उस नगर का विनाश करेगा। यही कारण है कि हमें लूत की पत्नी को स्मरण रखना है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लूका 17 अध्याय के 33 पद में हम पढ़ते हैं, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मेरे मित्रों, यहां पर ध्यान दें कि यह अंश धर्मशास्त्र के स्वविरोधी कथनों में से एक है। उस समय जीवन रक्षा के लिए यथासंभव प्रयास किया जाएगा, परंतु बहुत देर हो चुकी होगी। उन्हें अपना जीवन खोने के लिए तैयार रहना है और यीशु को अपना जीवन दे देना है। उस समय जीवन रक्षा करना व्यर्थ ठहरेगा। लूका 17 अध्याय उसके 34-36 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। नूह के युग में संसार से कौन उठाया गया था? संसार में कौन रह गया था? यहां वह बादलों में उठाए जाने की चर्चा नहीं कर रहा है। यह मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 37-41 पद में की गई उन अभक्तों का न्याय के लिए उपस्थित किया जाना है और हजार वर्ष के राज्य में प्रवेश करने वालों का पृथ्वी पर छोड़ दिया जाना है। मित्रों, यहां पर ध्यान दें कि यीशु के अनुसार पृथ्वी गोल है। दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। पहली घटना रात की है और दूसरी दिन की, अर्थात पृथ्वी पर एक ओर रात होगी और दूसरी ओर दिन, अर्थात पृथ्वी गोल ही है। हम लूका 17 अध्याय के 37 पद में पढ़ते हैं, यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहां होगा? उसने उनसे कहा, जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। इस पद की तुलना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 17 पद से की गई है। इसे हर्मगिदोन का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध का अंत उस समय होगा जब मसीह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा। मेरे मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान। पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान। पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान।
का हुआ था घर से कितना दूर गया था, मैं जो पापी भटका हुआ था घर से कितना दूर गया था,
तूने मुझको आन बचाया, तूने मुझको आन बचाया, पाप से मुझको फिर से मिलाया। सामर्थ में सबसे महान, पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान, पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान, पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान,
पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान, पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान। कुछ भी नहीं हूँ, मेरी रग रग में ही यीशु, तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं, मेरी रग रग में ही यीशु,
दिल की हर धड़कन में यीशु, दिल की हर धड़कन में यीशु, मेरी सांसों में भी यीशु।
सबसे